This is an ABP Life podcast.
मुझे वैक्सीन दो, मुझे वैक्सीन दो, मुझे वैक्सीन दो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही लोग हैं जो ये राग अलाप रहे हैं। After all, we are talking about COVID-19 vaccines. आपको बता दूं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने दो वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। एक है कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाई है और दूसरी है कोवैक्सिन जो भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर बनाई है। यानी कि ये दोनों टीके अब लगवाए जा सकते हैं। मगर अप्रूवल मिल गया है, टेस्ट हो चुके हैं, अब क्या? कैसे लगेगा ये टीका? कहाँ लगेगा ये टीका? किसको लगेगा ये टीका? क्या होगा सरकार का अगला कदम? क्या होना चाहिए हमारा अगला कदम? इन्हीं सब जरूरी सवालों का जवाब देने के लिए आई हूँ मैं साहिबा खान, आज एबीपी लाइव के पॉडकास्ट FII के नए एपिसोड में। हाँ जी, तो क्या होंगे सरकार के सबसे पहले स्टेप्स आफ्टर द वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड? सबसे पहले तो सरकार टीके इकट्ठा करेगी यानी कि स्टॉक करेगी। तो SII द्वारा बनाई गई कोविशील्ड के 80 मिलियन डोजेस यानी कि 8 करोड़ डोजेस ऑलरेडी स्टॉक किए जा चुके हैं। तो अंदेशा ये है कि बहुत जल्द ही टीकाकरण शुरू होने वाला है। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक और ICMR मिलकर बना रहे थे उसे अभी स्टॉक करना बाकी है, इसीलिए इसे आप तक आते आते अभी कुछ समय लग जाएगा, जैसे मे बी कुछ हफ्ते या फिर एक आध महीना। अब जब बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी अप्रूवल नाम का शब्द कई बार हम पॉडकास्ट में और रेडियो में टीवी पर सुन रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों टीकों को इमरजेंसी अप्रूवल ही मिला है। तो क्या है इमरजेंसी अप्रूवल और क्या अंतर है जनरल अप्रूवल और इमरजेंसी अप्रूवल वाली वैक्सीन में? अब ये सब एक्सपर्ट्स की बातें हैं दोस्तों, तो क्यों ना एक्सपर्ट्स को ही इस पर जवाब देने दें। आइए हम आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर चंद्रकांत लिहारिया के पास, जो पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम्स के एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने हाल ही में टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट COVID-19 पैंडेमिक नाम की किताब भी लिखी है। ये पॉडकास्ट भर हमारे साथ रहेंगे और हमारे जो लेमन सवाल हैं या फिर हमारे जो FAQs हैं उनका जवाब देंगे। हेलो डॉक्टर चंद्रकांत लिहारिया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट FII।
धन्यवाद
सर। मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ अ वैक्सीन क्या होता है और क्या इमरजेंसी अप्रूवल वाली वैक्सीन्स और रेगुलर वैक्सीन्स में कोई अंतर है?
इसके लिए जो शब्द कॉमनली यूज किया जा रहा है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन या EUA, बट इसको अन्य शब्द भी इस्तेमाल होते हैं जैसे अप्रूवल फॉर रेस्ट्रिक्टेड यूज और अन्य तरह के अप्रूवल। मुख्य अंतर मैं कहूंगा उसमें ये है कि इसमें जब ट्रायल्स कंप्लीट होते हैं उससे पहले भी अप्रूवल दे दिए जाते हैं ट्रायल के पूरी तरह कंप्लीट और पूरा फॉलो अप होने में। तो यूजुअली इस प्रक्रिया में अगर नॉर्मल समय में वैक्सीन को लिया जाएगा तो जो वैक्सीन का लास्ट केस रिक्रूट हो जाएगा और जो आउटकम उसकी देखी गई है उसके बाद जो सफिशियंट फॉलो अप अलाउ किया जाता है और सेफ्टी डेटा देखा जाता है और उसके बाद ही रेगुलेटरी अथॉरिटीज अप्रूव करती है, एक बात। दूसरा बात, रेगुलेटरी अथॉरिटीज उसमें उनकी मीटिंग्स में टाइम लगता है और अन्य समय लगते हैं तो डिले होता है, लेकिन इमरजेंसी ऑथराइजेशन में जब ट्रायल्स स्टिल ऑन गोइंग और फॉलो अप सफिशिएंट फॉलो अप बाकी पेशेंट का फॉलो अप अभी रह गया उसके बावजूद भी उस अवेलेबल डेटा के आधार पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी देखती है कि हाँ यह अगर बेनिफिशियल हो सकता है और कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है तो उसको रेस्ट्रिक्टेड यूज में अप्रूवल दे दिया जाता है। अब रेस्ट्रिक्टेड यूज में अप्रूवल का मायने यह भी है कि उन भले ही अप्रूवल इमरजेंसी पर्पज से दे दिया गया है लेकिन एक फाइनल यूज वो जनरल पब्लिक के लिए बाद में फिर एक बार डेटा को फिर से देखा जाएगा और तब दिया जाएगा। सो इससे टेम्परेरी अप्रूवल जो ट्रायल्स चल रहे हैं उनको कंप्लीट करना होगा, उनका रेगुलर रिव्यू किया जाएगा। साथ में भले ही इमरजेंसी यूज के बाद पर्टिकुलर मेडिसिन या वैक्सीन यूज कर ली जाए इसमें मैन्युफैक्चरर्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वो 15 दिन या एक महीने पर रेगुलरली सेफ्टी डेटा सबमिट करे और रेगुलर अपडेट्स देता रहे। तो डिफरेंट प्रोविजन देते हैं, हर कंट्री का अलग सिस्टम होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए ये तो क्लियर हुआ। आपको बता दें कि भारत में दोनों ही वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। तो बेसिकली सब रेडी है, वैक्सीनेशन ड्राइव कभी भी स्टार्ट हो सकती है इस वीक या अगले हफ्ते। तो किसको सबसे पहले लगेगा टीका? दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि कोरोना फ्रंटलाइनर्स और वृद्ध लोगों को सबसे पहले टीका लगेगा, मगर कितने वृद्ध लोगों को, कितने फ्रंटलाइनर्स को, क्या आप उनमें काउंट होते हैं? तो भाई देखिए, सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि 3 करोड़ लोगों को सबसे पहले टीका लगेगा, जिसमें से करीब 1 करोड़ होंगे डॉक्टर्स और बाकी होंगे आशा वर्कर्स, नर्सेस, बाकी सरकारी लोग जो इस पूरे प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे, यानी कि हमारे 2 करोड़ फ्रंटलाइनर्स। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि इन सभी को वैक्सीन फ्री में लगेंगे। इसी फर्स्ट फेज में ही 50 साल से ऊपर के वृद्ध लोगों को भी शामिल किया जाएगा, और अगर आपको कोमोर्बिडिटीज हैं और आप 50 साल से कम उम्र के हैं तो आपको भी टीका इसी फेज में लगेगा। जुलाई से लेकर अगस्त तक इस फेज के खत्म होने के चांसेस हैं। अब बाकी लोगों का क्या, उन्हें कब लगेगा टीका? ये तो कहा गया है कि अगस्त तक फेज 1 खत्म होगा, मगर ऐसा भी नहीं है कि तब तक बाकी लोगों को टीका ही नहीं लगेगा। इस प्रक्रिया के कुछ हफ्तों या एक आध महीने बाद से ही बाकी पॉपुलेशन को भी दोस्तों टीके लगने चालू हो जाएंगे। बस देखना ये होगा कि जो वैक्सीन डोजेस हैं वो कितनी हैं और कितनी बन रही हैं। आदर पूनावाला के सेरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि उन्होंने तो भारी मात्रा में और डोजेस बनाने का काम पहले ही चालू कर दिया है। और फिर दोस्तों अभी केवल 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिली है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि दुनिया भर में जो वैक्सीन बनी है उनको भी अप्रूवल दिया जाएगा, जैसे कि फाइजर हुआ, मॉडर्ना हुआ, रशिया की स्पुतनिक वी हुई, तो इन सभी को अभी धीरे धीरे करके अप्रूवल मिलेगा। अगर आपको कोरोना हो चुका है तो क्या आपको वैक्सीन की जरूरत है? जी हाँ, केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर आपको कोरोना हो भी गया हो तो बेहतर इम्यूनिटी के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। कैसे होगी लोगों की पहचान, तो इस पर भी सरकार का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन की जो सूची है उसके हिसाब से लोगों की पहचान होगी। कितनी डोजेज लगेंगी? वैक्सीन की 2 डोजेज लगेंगी और दोनों वैक्सीन 28 दिनों के अंतराल में लगेंगी। एक ही टाइप की वैक्सीन एक इंसान को लगेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गए एक दिन कोविशील्ड का डोज ले लिया, 28 दिन बाद आपने कोवैक्सीन का डोज ले लिया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने कोविशील्ड का डोज लिया है पहले तो आपको वही लेना पड़ेगा, अगर आपने स्पुतनिक वी का लिया है तो वही लेना पड़ेगा अगला डोज भी, अगर आपने कोवैक्सीन का लिया है तो अगला डोज भी कोवैक्सीन का ही होगा। बेसिकली दोनों डोजेस एक ही वैक्सीन के होने चाहिए। कैसे होगा टीकाकरण कराने वालों का पंजीकरण? तो फ्रेंड्स, कोविन यानी कि COWIN नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पर करना होगा आपको रजिस्ट्रेशन। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का अभी तक कोई प्रावधान नहीं आया है, सभी को ऑनलाइन बेसिस पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी। इन लोगों को उनके फोन के थ्रू वैक्सीनेशन शेड्यूल पहुंचवाया जाएगा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नरेगा का कार्ड, पासबुक, पेंशन डॉक्यूमेंट इत्यादि सभी काम करेंगे। हाँ, मगर ध्यान रहे कि उसमें आपकी फोटो जरूर लगी हो। अब हम दोबारा वापस जाएंगे डॉक्टर चंद्रकांत के पास और उनसे पूछेंगे अपने बाकी के FAQs। जी सर, मेरा आपसे पहला सवाल तो यही है कि कैसे काम करेगा ये वैक्सीन और इन जनरल वैक्सीन कैसे काम करती है?
देखिए, वैक्सीन्स और नेचुरल इन्फेक्शन में एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो नेचुरल इन्फेक्शन में होता है कि पहले इन्फेक्शन आता है और फिर उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है और उसके बाद व्यक्ति रिकवर हो जाता है और भविष्य के इन्फेक्शन से बचा रहता है। तो यह प्रक्रिया होती है नेचुरल इन्फेक्शन में। लेकिन नेचुरल इन्फेक्शन में रिस्क या खतरा रहता है कि हम नहीं जानते कि उसका आउटकम क्या होगा, तो उसमें व्यक्ति को गंभीर बीमारी भी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है और कुछ केसेस में मृत्यु भी हो सकती है। तो एक नेचुरल इन्फेक्शन के माध्यम से इम्यूनिटी डेवलप होना एक खतरनाक है और हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए वैक्सीन्स बनाई गई। वैक्सीन्स एक में जो सब्सटेंस होता है उसमें इन्फेक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती है, इन्फेक्शियसनेस नहीं होती है, लेकिन वो उसी तरह से जैसे एक नेचुरल इन्फेक्शन व्यक्ति का इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा उस तरह से इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इसमें इन्फेक्शियसनेस नहीं होती है वैक्सीन में, लेकिन इम्यूनोजेनेसिटी होती है, मतलब हुआ कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देने की क्षमता होती है।
जी जी तो डॉक्टर, मैं आपसे दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि इतनी स्ट्रेंज बीमारी है कि इसके अभी भी स्ट्रेंज नए नए आ रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ये इवॉल्व हो रही है, तो इतनी जल्दी इतनी स्ट्रेंज बीमारी का वैक्सीन कैसे आया है? क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा है स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स के टाइम में हमने देखा कि 3-3 साल लगे हैं वैक्सीन बनने में, तो इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे आया है, अगर आप वो हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें।
तो सारी दुनिया में रेगुलेटरी बॉडीज ने उन अप्रूवल्स को फास्ट ट्रैक कर दिया कि एक तो एक से ज्यादा फेज का अप्रूवल दिया जिससे उन एक फेज से दूसरे फेज में जाने का जो टाइम लगता है उससे बचा जा सका। साथ में यह भी किया कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से वो उनको वॉलंटियर्स के लिए पहले से ही तैयारियां की और इस तरह से टाइम को सेव किया गया जहां पर भी रेगुलेटरी और अदर प्रोसेस की जा सकती है। तो संक्षेप में मैं कहूंगा कि सिर्फ रेगुलेटरी प्रोसेसेस प्रक्रियाओं को फास्ट ट्रैक किया गया है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिस पर ऐसा लगे कि कोई भी स्टेप बाईपास किया गया। सारी प्रक्रियाएं उसी तरह से पूरी की गई हैं, लेकिन जहां पर भी रोड ब्लॉक्स या हर्डल्स होते थे या डिले होते थे उनको पहचान कर उन प्रक्रियाओं को जल्दी कर दिया गया है। जो डिले या लंबा समय वैक्सीन में लगता है उसकी एक वजह और है, वो वजह होती है कि वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सरकारें पर्याप्त संख्या में पैसा नहीं देती हैं या रिसर्च डेवलपमेंट में इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता है
जी।
लेकिन जब COVID-19 पेंडेमिक हुआ तो सारे विश्व में सारी सरकारों ने अतिरिक्त पैसा दिया और सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट मिला और इस वजह से रिसर्चर्स उस पर काम कर सके।
मेरा ही नहीं, ये आम जनता का ये सवाल रहता है कि उनका जो ट्रस्ट एक जो वैक्सीनेशन ड्राइव पे होना चाहिए, जो भारत की आई थिंक द मोस्ट एम्बिशियस वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये उस पे वो ट्रस्ट नहीं दिखाई दे रहा है फॉर सम रीजन।
सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सारे क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीन रिसर्च एक पब्लिक आईज के सामने हो रही है, हर कदम को जनता के सामने रखा जा रहा है। हम जानते हैं कि इस पेंडेमिक में सिर्फ वैक्सीन के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य बातों के बारे में भी काफी सारे मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाहें फैलती रही हैं जो सोशल मीडिया से सर्कुलेट हुई हैं, तो उससे पूरे पेंडेमिक का रिस्पांस में ही असर पड़ा है और वैक्सीन पर भी के बारे में भी काफी सारी अफवाहें चलती रही हैं। दूसरी बात हमें यह भी जाननी होगी जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि जो वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल का ऑब्जर्वेशन या गाइडेंस या मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होता है, उनके द्वारा की जाती है। हर क्लिनिकल ट्रायल में वो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होता है, उनको बोलते हैं डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड। तो जब भी कुछ ऐसा उससे संबंधित सारी जानकारी उस डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड को शेयर की जाती है। पिछले कुछ महीनों पहले आपने सुना होगा कि कुछ कंट्रीज में वैक्सीन ट्रायल में किसी ट्रायल पार्टिसिपेंट को कोई बीमारी हुई तो फिर उसके बाद ट्रायल्स को रोक दिए गए, तो ये सब डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड करता है। जब ये सब ट्रायल्स में हुआ तो हमें वो आश्वस्त करता है कि कहीं ना कहीं कोई है जो उस चीज पर नजर रखे हुए है, तो जनता को इससे विश्वास बढ़ाना चाहिए वैक्सीन पर।
सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आपने तो बकायदा एक पूरी किताब लिखी है टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट COVID-19 पैंडेमिक, मगर एक नटशेल में अगर हमारे श्रोताओं को आप समझाते हुए जाएं कि किस तरीके से इंडिया ने एक्चुअली हाउ इंडिया फॉट अगेंस्ट COVID-19, तो आपको क्या लगता है, आपकी टिप्पणी आप बताइए।
कहने को तो यह बीमारी को स्वास्थ्य तंत्र के माध्यम से लड़ा गया है जिसमें टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का पालन किया गया, लेकिन असल में उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जनता ने जिस इन प्रोग्राम में और इन एक्टिविटीज में जितनी अच्छी भागीदारी दिखाई है उसी से यह बीमारी रुक सकी है। तो हम अगर देखें कि यूरोपियन कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वायरस अभी भी फैल रहा है और भारत में काफी उस पर कमी रोकथाम हो चुकी है, तो एक मुख्य अंतर है कि भारत में जनता धीरे धीरे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रही है। हम लोग मास्क का पालन कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी सोशल गैदरिंग मिनिमाइज कर दी है और लगभग नगण्य कर दी है। हम मान के चल सकते हैं कि देश की एक सफिशियंट जनसंख्या को जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो उसमें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन तब तक हमें इसका पालन करना है
जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर लहारिया। आपने बहुत ही सरलता से समझाया, बहुत ही आसान भाषा में हमारे श्रोताओं को समझाया है कि कैसे ये वैक्सीनेशन काम करेगी और कैसे अफवाहों पर ना जाना है। सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू डॉक्टर। शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए।
धन्यवाद।
तो चलिए, आई होप आप सभी को हमारी आज की पेशकश पसंद आई होगी। दोस्तों, ये सारे वो FAQs थे जो आजकल हर फोरम पर बताए जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, और इसीलिए हमें लगा कि एक FYI जो इन सभी FAQs के जवाब देता है वो तो बनता ही है, नहीं? तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ जल्द आपसे अगले FYI में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, मास्क जरूर लगाएं और सुनते रहे ABP लाइव पॉडकास्ट। बाय बाय।
This is an ABP Life podcast.